जय गे रे जय गोपीचन वल्लभा जय गिरिवर धरी जय गिरिवर धरी यस्सदानन्दना जय ब्रज जन रञ्जना जय ब्रज जन रञ्जना यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जयो यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारष्टोदरक श्रीमद्स डिवाइन ग्रेस श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविध संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्रीमद्स डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की दाय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग वर्ल्ड होली नेम वी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया तो सभी देश विदेश में जितने लोग आज ये वर्ल्ड होली नेम वीक के उपलक्ष पर श्रीमद् भागवतम क्लास देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। और वर्ल्ड होली नेम वीक के आयोजकों के ओर से ये 8वें स्कंद का 23वें अध्याय का 16वां श्लोक, इसके ऊपर चर्चा करने का निवेदन हुआ है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 8th कैंटो 23rd चैप्टर 16th वर्स। देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। मंत्रतस्तंत्रतस्छिद्रम देशकालार्हवस्त मंत्रतस्तंत्रतस्छिद्रम देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। मंत्रतस्तंत्रतस्छिद्रम देशकालं तब। माताजी, मंत्रता वैदिक मंत्रों का गलत उच्चारण करने से, तंत्रतः नियामक सिद्धांतों के पालन करने के लिए अधूरे ज्ञान से, छिद्रम दोष देश देश काल तथा समय आरह तथा पात्र वस्तुतः तथा सामग्री सर्वम ये सब करोति बनाता है निश्चिद्रम त्रुटिहीन अनुसंकीर्तनम पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन तब। आपका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं, देश काल पात्र तथा सामग्री का विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु हे भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, वह है श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। बृहत नारदीय पुराण। इस कलयुग में वैदिक कर्मकांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता है जो वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री जुटा पाता हो। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वह है संकीर्तन, अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर करना। यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधश। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गवाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का बंद कर दो कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञ की अच्छी तरह यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपए खर्च करने की लत है। यह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायजंति ही सुमेधश। यद्यपि शुक्राचार्य जी कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया है निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण करने देता है। कलयुग में वैदिक कर्मकांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने समस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतया श्री विग्रह की पूजा में, फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वर्ल्ड होली नेम वीक के शुभ अवसर पर पूरे इस्कॉन के सभी मंदिरों में भगवत भक्तगण नाम की महिमा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सव इस संबंध में मनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आठवें स्कंद में हम देखते हैं कि वामन देव जी ने बलि महाराज को अपने प्रेम पाश में बांध लिया। जगत नहीं जानती कि ये वामन देव जी का प्रेम पाश है। सबको लग रहा है कि वामन देव ने उनको अपने छल के पाश में बांध लिया। तो उस समय शुक्राचार्य जी उनके समक्ष वहां खड़े हैं। वामन देव जी शुक्राचार्य की ओर देखकर कहते हैं कि आप तो इनके गुरु थे, हर प्रकार से आपने योजना बनाई, लेकिन अपने कुशाग्र बुद्धि और हर प्रकार के राजनीति के चाल चलन के बाद भी आपका शिष्य बेचारा मेरे अधीन हस्तगत हो गया। आपकी विफलता के पीछे कारण क्या है? आप तो इतने संपन्न ब्राह्मण हो और अभी तक आपने जो कोई भी उपाय बताए हैं आज तक कभी फेल हुआ ही नहीं, आज क्या हो गया? तो उस उत्तर में ये श्लोक शुक्राचार्य जी सुनाते हैं कि इस संपूर्ण लीला का दर्शन करके मैं समझ गया कि जितने मेरे मंत्र तंत्र इत्यादि वो सभी एक स्थान पर लेकिन दूसरी ओर अगर भगवान के नाम संकीर्तन को रखा जाए तो संकीर्तन का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो इसलिए सर्वम करोति निश्चिद्रम, जितने भी मंत्र तंत्र इत्यादि कर्म कांड की प्रक्रिया में कोई भी कमी भले न रहे, वो सारी कमी केवल संकीर्तन के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने इस जगत में प्रकट हुए। चौदिके ते सब लोक बोले हरि हरि, प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौर हरि। महाप्रभु आलारनाथ में सभी लोगों के बीच सर्वप्रथम सार्वजनिक संकीर्तन आरंभ किए। कंचन सदृश देह अरुण बसन, पुलक अश्रुकंप स्वेद ताहते भूषण। और इस संकीर्तन के माध्यम से महाप्रभु ने उस हरिनाम संकीर्तन की शक्ति का विज्ञापन किया कि इस 16 अक्षर के महामंत्र के नाम जप करने मात्र से हृदय के भीतर सुप्त कृष्ण भक्ति का विशाल सागर एक महा फव्वारे के रूप में प्रकट होती है और हमारे समस्त शरीर को, भावनाओं को पूरी तरह आंदोलित करके हमें कृष्ण भक्ति में पूर्णतः निमग्न कर देती है। तो इसलिए महाप्रभु हर प्रकार के अष्ट विकार प्रदर्शित कर रहे थे। पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण, हर व्यक्ति अपने प्रयास के माध्यम से अपने हृदय के आंतरिक अनुभव को चखने का प्रयत्न कर रहा है और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त जगत के समक्ष 8 वर्ष या 6 वर्ष लगभग दक्षिण भारत की यात्रा किए और वो 6 वर्ष के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में ही इस महामंत्र का आस्वादन कर रहे थे। महामंत्र का प्रचार वो 6 वर्ष किए और उसका आस्वादन अपने भक्त समुदाय के बीच जगन्नाथपुरी में लगभग 18 वर्ष तक किए। और इसलिए ये प्रसंग तब आता है जब दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ करने से पूर्व महाप्रभु आलारनाथ में हैं। प्रभुर कृपाय होए महाभागवत, सही सब आचार्य हो या तारिला जगत। और तत्पश्चात जब महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं तो महाप्रभु जिस व्यक्ति को रास्ते में, उनके गांव में या किसी भी स्थान में भेंट करने के पश्चात जब आलिंगन करते थे तो वो व्यक्ति तत्क्षण कृष्ण भक्ति के प्रचंड ज्वालामुखी को अपने हृदय के भीतर अनुभव करने लगता और ये महाप्रभु ने अपनी कृपा की शक्ति से परिणित किया। प्रभुर कृपाए होए महाभागवत, प्रभु की कृपा से वो सब महाभागवत बने और इसलिए सही सब आचार्य होइया तारिला जगत। और क्षण भर में वो सभी आचार्य बनकर अपने समस्त गांव का उद्धार कर दिए। तो इसी प्रसंग में वो वर्णन करते हैं, नवद्वीपे जय शक्ति न कोयला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशी निस्तारिला दक्षिण देशे, कि महाप्रभु ने ये हरिनाम की शक्ति का विज्ञापन नवद्वीप में नहीं किया लेकिन दक्षिण देश में किया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो उनके इस प्रयास में बहुत लोग विरोध कर रहे थे और ऐसे विरोधी तत्व के अस्तित्व में महाप्रभु नवद्वीप को अनुकूल परिवेश नहीं मान रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन का मैं उद्घाटन करूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का भारत में प्रचार करने का बहुत प्रयास किया लेकिन हर प्रकार के विरोध के कारण यहाँ पर लोग उसे अनुकूल भाव से स्वीकार नहीं किए, इसलिए पाश्चात्य देशों में जाकर हमने इसका उद्घाटन किया है। तो प्रचार का मूल तत्व है कि जहाँ पर भी अनुकूल परिवेश हो, जहाँ पर भी चेतना अनुकूल हो, वहाँ पर यह हरिनाम संकीर्तन दिया जा सकता है और वहाँ फलित होगा। सूर्य शत समकांति अरुण बसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। तब महाप्रभु का दिव्य तेजोमय देह को जब रामानंद राय सर्वप्रथम देखे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो महाप्रभु के इस जाज्वल्यमान देह को देखकर वो बड़े आकर्षित हो गए। तो महाप्रभु के कई अस्त्र थे जिसके माध्यम से वो लोगों के हृदय को, चित्त को परिवर्तित करते थे। सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य अंग कांति और उनका स्वरूप, उनका सौंदर्य का सागर और उनके आनंद को देखकर हर व्यक्ति आकर्षित होकर उस आनंद के सागर के दो घूंट पीने के विचार करने लगते थे। तो इसलिए सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन, महाप्रभु के उस सौंदर्य को देखकर रामानंद राय आकर्षित हुए। आमन स्तरिते तोमार इह आगमन परम दयालु तुमि पतित पावन। और महाप्रभु को कहते हैं कि आप हम जैसे पतितों का उद्धार करने यहां प्रकट हुए हो। तो महाप्रभु का जो रामानंद राय के साथ संवाद हुआ दक्षिण भारत में, बहुत अधिक स्थानों पर महाप्रभु ने संवाद नहीं किया, अधिकांश समय केवल हरिनाम संकीर्तन ही कर रहे थे। मोरे न मानिले सब लोक होबे नाश इथि लागी कृपार्द्र प्रभु कोरिला संन्यास। तो महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए संन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी। तो वास्तव में यह वर्णन आ रहा है कि नवद्वीप यही शक्ति नव कोयला प्रकाश है, क्योंकि नवद्वीप में महाप्रभु को विरोध होने लगा और कई ज्ञानी कई पंडित सोचने लगे कि इनके साथ कौन आदान प्रदान करेगा, इनकी बातों को कौन स्वीकार करेगा। तो महाप्रभु ने अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए और विचार किया कि अधिकांश लोग जिनका हृदय और जिनकी भावनाएं मेरे विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उनका तो उद्धार निश्चित होने वाला है, लेकिन कई कोटि कोटि ऐसे मायावादी ज्ञानी तत्व हैं जो मेरे इन बातों को सुनकर इनका विरोध करेंगे, जो मेरे विरोधी तत्व हैं, जिनका मेरे प्रति द्वेष है, उनको कैसे मैं अपने कृपा के बलिष्ठ आलिंगन में स्वीकार करूं और उन्हें हरिनाम संकीर्तन के इस आनंद के सागर में निमग्न करूं। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय एक ऐसा करुणा वर्णालय था जिसमें महाप्रभु अपने सबसे बड़े विरोधी, शत्रु और द्वेषी व्यक्ति को भी इस हरिनाम के अमृत में निमग्न करना चाहते थे। अन्यथा महाप्रभु का संन्यास लेने के पीछे कोई दूसरा औपचारिक कारण नहीं था। हाँ, महाप्रभु गोपियों के भाव में, क्योंकि गोपियों ने हर प्रकार के आसक्ति की तिलांजलि देकर भगवान के विषय में ही विचार करते रहे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। कृष्ण को आत्मग्लानी थी कि मैं वृंदावन से निकलकर गोपियों की तरह एकाग्र चित केवल गोपियों का स्मरण नहीं करता रहा, मैं मथुरा में मथुरा वासियों के साथ आदान प्रदान किया, वृष्णि वंशियों के साथ आदान प्रदान किया, द्वारका वासियों के साथ मेरा संबंध, यादवों के साथ मेरा संबंध बना रहा, इसलिए मैं तो बहुशाखा ही अनंतश्च हो गया। इसलिए अगर गोपियों के उस एकाग्र चित्त भाव के साथ आदान प्रदान करना हो तो अगले अवतार में जैसे गोपियों ने पतिसुतान वयात भ्रातृ बांधवात अति विलंगिते इन सभी भौतिक जंजीरों के चिन्ह को तिलांजलि दी, मुझे भी इन श्रृंखलाओं को काटना होगा। इसलिए उस आदान प्रदान प्रतिकार स्वरूप महाप्रभु ने संन्यास लिया। लेकिन यहां पर वर्णन कर रहे हैं आदि लीला में, मोरे न मानिले सब लोक होबे नाश। महाप्रभु कहते हैं अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी वाणी को, मेरे मिशन को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं हरिनाम संकीर्तन लोगों के समक्ष वितरित करने आया हूं, इस हरिनाम के अमृत को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उनका नाश होगा। इथि लागी कृपार्द्र प्रभु कोरिला संन्यास। इसलिए कृपावश श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए। क्यों? संन्यासी बुद्धे मोरे कोरिबे नमस्कार तथापि खंडिला दुख पाईबे निस्तार। तो महाप्रभु ने विचार किया कि सन्यासी बुद्धिये मोरे कोरिबे नमस्कार, कि भारत में वैदिक सभ्यता और संस्कृति के नियमों के अनुसार हर व्यक्ति सन्यासी को प्रणाम तो करता है। विशेष रूप से कई लोग जो हर प्रकार के तत्व ज्ञान का पालन कर रहे हैं, जो ज्ञानी योगी इत्यादि आध्यात्म के में रचे पचे हैं, वो अवश्य आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सन्यासी को सामाजिक रूप से तो अवश्य सम्मान करेंगे ही, वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार। इसलिए सन्यासी बुद्धे मोरे कोरिबे नमस्कार, तो सन्यासी देखकर मुझे नमस्कार जब करेंगे, तथापि खंडिबे दुख पाइबे निस्तार, तब ऐसी अवस्था में जब वो मेरा नमस्कार करेंगे, मुझे नमन करेंगे, सम्मानित करेंगे, तब वो दुखों के और क्लेशों के जंजाल से बचेंगे। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये विचार करके सन्यास लिया, और इस सन्यास के माध्यम से महाप्रभु ने केवल एकमात्र योजना रचना की, कैसे हरिनाम संकीर्तन का मैं वितरण करूं। हे न कृपा मय चैतन्य न भज जय जन तत् सर्वोत्तम होइलई तारे असुरे गणन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, कि हे न कृपा मय भजे चैतन्य न भजे जयचन, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं करेगा और उनके इस कृपा को स्वीकार नहीं करेगा, हरिनाम संकीर्तन को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तो सर्वोत्तम होइले से ही असुरे गणन, सर्वोत्तम असुरों में उनकी गणना होनी चाहिए। कविराज गोस्वामी बड़े प्रेम से थप्पड़ मार रहे हैं और फिर कहते हैं, अत एव पुनः कहो ऊर्ध्व बाहो होइया चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। तो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे, ये चैतन्य नित्यानंद वगैरह कहां से लेके आ गए, ये तो इतने प्रसिद्ध नहीं है, हम तो कभी सुने ही नहीं, हम तो भारत में जन्मे हैं, ये कहां से आप प्रकट करके लेके आ गए। तो ये कह रहे हैं, हे न कृपा मय चैतन्य न भजे जय जन, तो अतएव पुनः करो, फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऊर्ध्व बाहु होइया, अपने दोनों भुजाओं को आसमान की तरफ प्रकाशित करते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, याचना के भाव में। क्या याचना मैं कर रहा हूं? चैतन्य नित्यानंद भज, महाप्रभु और नित्यानंद का भजन कीजिए, कुतर्क छाड़िया, हर प्रकार के कुतर्क को छोड़िए, कि कहां कौन से शास्त्र में दिया है, हमने नहीं सुना है, हमारे घर पर कभी इसकी चर्चा नहीं हुई थी, हमारे समाज में इसके विषय में कभी चर्चा नहीं हुई थी, रामलीला तो हम मनाए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, ये चैतन्य नित्यानंद कहां से आ गए, वो तो केवल बहुत बड़े संत थे। तो ये कह रहे हैं, चैतन्य नित्यानंद भजक कुतर्क छाड़िया, ज्यादा तर्क मत लगाओ, कुतर्क को छोड़ दो। तो फिर वो आगे कहते हैं, यदि वा ये तर्क कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र कहे से ही बुद्धिमान। तो कहते हैं कि यदि वा तार्किक कहे, कोई कह सकता है कि नहीं, मैं तो जो तर्क के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है उसी को मैं स्वीकार करता हूं। यदि वा तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, मेरे लिए तो तर्क प्रमाण है, लॉजिक इज अल्टीमेट फॉर मी। तो कहते हैं, तर्क शास्त्र सिद्ध जय से सेव्यमान। तो कहते हैं, जो तर्क शास्त्र में जो दिया गया है उसको हम स्वीकार करेंगे और कुछ नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसे तर्क पर ही विश्वास करना है तो मेरी ओर से प्रस्ताव क्या है, तर्क का प्रयोग करो, तर्क का प्रयोग करने के बाद फिर स्वीकार करो, एग्री, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने तर्क को किस ओर आप लगाओ उसका मैं संकेत करता हूं, क्या? श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार कोरिते चित्ते पावे चमत्कार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के दया के विषय में आप विश्लेषण कीजिए और तर्क का प्रयोग उसमें कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, महाप्रभु के दया के विषय में विचार कीजिए, विचार कोरिते चित्ते पावे चमत्कार। और महाप्रभु के दया के विषय में आप विचार करोगे तो चित्त में चमत्कार का अनुभव करोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस जगत में दया करता है तो वो शारीरिक स्तर पर कर पाता है, और वो दया चाहे किसी भी रूप में क्यों ना प्रकट हो, शरीर के अंत के पश्चात उस व्यक्ति के कोई काम नहीं आ सकती। लेकिन महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों के ऊपर दया कर रहे हैं, बिना उनकी योग्यता कुयोग्यता का वर्णन विचार किए, वो उस व्यक्ति के आत्मा को स्पर्शीभूत करके सनातन काल के लिए उस आत्मा की पूंजी बनकर उसके साथ चलती है। वो एक ऐसी पूंजी है जो उस आत्मा के सनातन काल से अनादि काल से इस भौतिक जगत के कठोर यात्रा की दिशा को परिवर्तित करके नरक की ओर चलते हुए उस जीव की यात्रा को सीधा वैकुंठ की ओर खींच के ले जाती है। तो बिना किसी योग्यता के विचार किए इतना बड़ा सौभाग्य की पूंजी किसी को देना, तर्क कीजिए कि क्या ये वास्तव में कृपा का लक्षण नहीं है? हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला जता तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्यर का कथा। अगर आपके तर्क में अभी भी कुछ कमी रह गई है और अभी तक मेरी बातों में विश्वास नहीं, तो एक केस स्टडी आपको हम देते हैं। जगाई मधाई पर्यंत महाप्रभु कुयोग्यता के कोई सीमा नहीं रखते, चाहे कोई व्यक्ति जगाए और मधाई के स्तर पर भी क्यों न हो। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला जता तथा, श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से और बिना किसी रोक टोक के हर जीव में इस हरिनाम संकीर्तन को वितरित करते हैं। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगुड़ भंडार, बिलाइला जारे तारे न कोयला विचार। और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे हरिनाम के और कृष्ण प्रेम के बड़े ही बहुमूल्य भंडार को यूं खोलकर इस राजकोष के अंदर छिपा हुआ हर प्रकार के रत्न को लोगों में अयाचित बिना किसी मूल्य के वितरित कर देते हैं। तो इसलिए स्वतंत्र ईश्वर, अरे कैसे कर सकते हैं? अरे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी ने जो खजाना रखा है तिजोरी की चाबी तो इनके पास रहती है। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, तो उनके तिजोरी में सबसे बहुमूल्य जो रत्न है वो स्वयं के प्रति प्रेम, निगूढ़ भंडार। ये बड़ा निगूढ़ है। ये शाम तो अंतकतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते। अर्थात उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए जो लंबा मार्ग है, उस मार्ग के अंदर प्रवेश पापों से मुक्त होने के बाद जो कृष्ण देते हैं भगवद गीता में, महाप्रभु उसी व्यक्ति को सीधा तिजोरी के सामने उठाकर खड़ा कर देते हैं और तिजोरी खोलकर उसके पास सारा भंडार खोल कर दे देते हैं। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, बिलाइला जारे तारे न कोयला विचार, कोई विचार नहीं करते। इसीलिए बौद्धाचार्य नव प्रश्न सब उठाइला, दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कोयला। तो इसलिए दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार ये महामंत्र का वितरण कर रहे थे, और बीच में कभी कोई अन्य किसी पंथ के या कोई तार्किक इत्यादि आ जाते तो ऐसा नहीं कि महाप्रभु भयभीत होकर हटते थे। दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कोयला, महाप्रभु के पास न केवल हरिनाम का अस्त्र है लेकिन साथ साथ संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत के हर प्रकार के औजार और अस्त्र सुनियोजित ढंग से वो प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बौद्धाचार्य नव प्रश्न सब उठाइला, नौ प्रकार के तर्क उनके समक्ष जब दक्षिण भारत में रखे गए, दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कैला। महाप्रभु ने उन तत्वों को एक एक करके समाप्त किया, नष्ट किया सिद्धांत का प्रयोग करके। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार जब जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके तथाकथित तर्कों को, उनके अपसिद्धांतों को, उनकी धारणाओं को परिवर्तित किया। जीबेर निस्तार लागी सूत्र कोयला व्यास, मायावादी भाष्य सुने होइल सर्वनाश। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कह दिया कि मायावाद भाष्य जो सुनेगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। जीबेर निस्तार लागी सूत्र कोयला व्यास, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए श्रील व्यासदेव जी ने वेदों की रचना की और वेदांत सूत्र लिख दिया। और तब यहां कहते हैं व्यास सूत्रेर अर्च जैच्छे सूर्येर किरण स्वकल्पित भाष्य में घे को रेच्छादन। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं एक सप्ताह के उनके निरंतर शारीरिक भाष्य के ऊपर चर्चा करने के पश्चात महाप्रभु केवल शांत भाव से श्रवण किए जा रहे हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में शंका हुई, अरे आप सुन रहे हो कि क्या? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई तो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, आप चुपचाप सुनते चले जा रहे हो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं व्यास सूत्रेर अर्थ जैच्छे सूर्येर किरण। व्यासदेव जी का अर्थ जो था, जो वेदांत सूत्र के रूप में है, व्यास सूत्र अर्थ जैच्छे सूर्य, वो तो सूर्य के किरणों की भांति प्रकाशमान है, स्पष्ट है, निर्मल है और निष्कलंक है। लेकिन स्वकल्पित भाष्य मेघे कोरे आच्छादन, आपने अपने कपोल कल्पित धारणाओं से जो प्रस्तुतिकरण किया है वो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य की किरणों को पूर्णतः आच्छादित कर दिया। तो इसलिए जब तक ऐसे माया जवनिका भगवान के और भगवान के अर्थ को पूरी तरह आच्छादित करेगी तब तक हम वास्तविक स्पष्ट कृष्ण भक्ति के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को का उद्धार किया और कृष्ण भक्ति के महा तेजस्वी भवन में उनको प्रवेश किया। और ऐसा प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में जब महान परिवर्तन अनुभव किया तब वो कहते हैं जगत निस्तारिले तुमी सेह अल्प कार्य, आमा उद्धारिले तुमी से शक्ति आश्चर्य। प्रभो, जगत का तो आपने उद्धार किया, ये छोटा काम था। जगत उद्धारिले तुमी सेह अल्प कार्य, ये बहुत ही तुच्छ कार्य था, इसमें कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं था। लेकिन आमा उद्धारी ले तुमी, आपने मुझ जैसे तार्किक को जो पूरी तरह मायावाद के इस विश्लेषण में रचा पचा था, पूरी तरह निमग्न था, आमा उद्धारी ले तुमी ए शक्ति आश्चर्य, ये आपके शक्तिशाली जो भाव का एक परिचय है। तर्क शास्त्रे जड़ अमी जैच्छे लौह पिंड आमा आमा द्रवाइले तुमी प्रताप प्रचंड। अरे मैं तो हर प्रकार के तर्क के शास्त्र में पूरी तरह लगा हुआ था, इस जंजाल में फंसा हुआ था, मेरी बुद्धि पूरी जड़ हो गई थी। तर्क शास्त्रे जड़ अमी, कैसे? जैसे लौह पिंड, ये तो लोहे की तरह कठोर और ठंडा, वैसी मेरी अवस्था थी। चाहे कितना कुछ भी आप बोलो, कुछ अंदर घुसता ही नहीं था। तर्क शास्त्र जड़ अमि जैच्छे लौह पिंड, लोहे के पिंड की भांति हो गया था। लेकिन आमा द्रवाइले तुमी, लेकिन आपने हमारे हृदय को पिघाल दिया। आमा द्रवाइले तुमी, उसे द्रवित कर दिया, कृष्ण भक्ति का भाव जागृत कर दिया। प्रताप प्रचंड, ये आपके प्रताप की क्या महिमा है, कितना प्रचंड है आपकी कृपा। प्रकाश आनंद कहे तुमी साक्षात भगवान, तब जदि करतार दास अभिमान। वैसे ही वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार जब किया, तब प्रकाशानंद सरस्वती ने भी महाप्रभु की स्तुति करते हुए कहा कि आप साक्षात भगवान हो, अन्यथा इस प्रकार की क्रांति वाराणसी में इन सभी मायावादियों के बीच कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग तो एक दूसरे को नमो नारायण बोलते रहते हैं, लेकिन तुम ही साक्षात भगवान, आप साक्षात भगवान होते हुए भी तब यदि कर तुमी दास अभिमान, फिर भी आप अपने आप को दास के रूप में प्रकट कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। और यह है हरे कृष्ण महामंत्र का मूल भाव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दासत्व की पुकार, कि हम आपके दास बने, अपनी सेवा में हमें नियोजित कीजिए। तो इसलिए वाराणसी में बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे पंडित हर प्रकार की विचारधारा में रचे पचे थे, लेकिन सन्यासी पंडित कोरे भागवत विचार, वाराणसी पुर प्रभु को रिला निस्तार। ऐसे वाराणसी पुर को महाप्रभु ने निस्तार किया। कैसे? सन्यासी पंडित कोरे भागवत विचार, सारे सन्यासी पंडित बैठकर भागवत विचार करने लगे। जो पहले अहम ब्रह्मास्मि बोलते थे, सभी वाराणसी के कोने कोने में लोग बैठकर भागवत विचार करने लगे। और तब निज लोक लैया प्रभु आइला बास घर, वाराणसी होइला द्वितीय नादिया नगर। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाप्रभु ने वाराणसी को दूसरा नदिया बना दिया। वाराणसी होइला द्वितीय नादिया नगर, वाराणसी पुर को महाप्रभु ने नादिया के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हर जगह केवल नाम संकीर्तन हो रहा था, केवल भागवत के ऊपर विचार चल रहा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के साथ कई ऐसे विरोधी तत्वों को दमन करने के लिए तर्क का प्रयोग किए। महाप्रभु ने उनके समक्ष हर प्रकार के वैष्णव सिद्धांतों को व्यक्त किया। रामानंद राय के साथ रस सिद्धांत के ऊपर चर्चा की। रूप और सनातन के समक्ष भी उन्होंने हमारे तत्वज्ञान का विवेचन किया। कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते तित्वाम ख्यापयितुम विशिष्य, कृपामृतेन अभिशिष्य देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। रूप और सनातन को इस सिद्धांत को प्रकाशित करने का अधिकार दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवश्य ही हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ बहुत से तत्वज्ञान का विवेचन भी किया। लेकिन हम देखते हैं कि महाप्रभु ने केवल इन सिद्धांतों का विचार मात्र किया, केवल चर्चाएं की और अलग अलग लोगों को प्रेरित किया, जिसके कारण सनातन गोस्वामी पाद ने 8 ग्रंथ लिखे, रूप गोस्वामी पाद ने 23 ग्रंथ लिखे, जीव गोस्वामी पाद ने 16 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। वो 16 के अंदर 4,00,000 श्लोक हैं, ये मत सोचो 16 ठीक 16 के अंदर श्लोक कितने? 4,00,000। महाभारत में 1,00,000। तो जीव गोस्वामी पाद ने जो लिखा उसको लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट है, जीव गोस्वामी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, रघुनाथ दास गोस्वामी ने 10 ग्रंथ लिखे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कितने ग्रंथ लिखे? कोई ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने बाकी जैसे जीव गोस्वामी पाद ने उनको संदेश किया, आदेश किया, वैसे क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्रा के पुत्र थे और तपन मिश्रा को महाप्रभु ने बांग्लादेश से ही वाराणसी भेज दिया था 1500 और 1505 के बीच में। क्यों भेज दिया था? क्योंकि महाप्रभु जानते थे कि वाराणसी के पुरोहित राजपूत घराना के राजगुरु हुआ करते हैं, तो इसलिए महाप्रभु तपन मिश्रा को उस स्थान में भेजना चाहते थे जिससे उनके अनुयायी भी राजपूत घराना में कुलगुरु बन सकें। तो महाप्रभु ने बहुत आगे की सोची और तब जाकर तपन मिश्रा वाराणसी में आए, और जब महाप्रभु भविष्य में जब वाराणसी पहुंचे तब तपन मिश्रा के साथ वहां पर रहे, और तब वहां रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु की सेवा की, और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आशीर्वाद दिया और प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु जब विश्राम करते थे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके चरणों का संवाहन करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की साक्षात सेवा करने का अवसर मिला। जीव गोस्वामी कभी महाप्रभु को मिल नहीं पाए, लेकिन जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में वैष्णवों के जो नेता माने गए और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इन्हें का तुमने देखा है कि महाप्रभु को सेवा की है क्या? अरे हमने किया है भैया, नहीं तो स्ट्रेटजी जीव गोस्वामी बनाते थे और तब जाकर जो तोड़ारमल और मानसिंह इत्यादि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने, और उसके कारण उस समय जो केवल राज घराने के लिए महल बनाने के लिए जो लाल पत्थर का प्रयोग होता था उसका प्रयोग गौड़ीय मंदिरों के निर्माण में वृंदावन धाम में हुआ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन कोई ग्रंथ उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को ही लिखना है, तो जो लिख सकता है वो लिखे, जो नहीं लिख सकता है वो और कुछ करे, करने के लिए तो बहुत कुछ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी हृदय परिवर्तन होने के बाद 4 ग्रंथ लिखे, रामानंद राय ने 7 ग्रंथ लिखे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के विषय में 2 ग्रंथ लिखे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 5 ग्रंथ लिखे। 5 क्या, वो तो एक चैतन्य चरितामृति बहुत हो गया, लेकिन उसको छोड़कर भी गोविंद लीलामृत इत्यादि लिखा। सरस्वती ठाकुर लगभग जवानी में थे, टीनेज में थे, तब वो गोविंद लीलामृत को छपवाना चाहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर को बार बार बोल रहे थे इसको छापते हैं, इसको छापते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भाई बहुत हाई है ये, छापेंगे लेकिन पढ़ेगा कौन? बोले नहीं छापेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है एक कॉपी छापते हैं आपके लिए, और इसको कोई समझ नहीं पाएगा अभी। और फिर वृंदावन दास ठाकुर ने 5 ग्रंथ लिखे, नरोत्तम दास ठाकुर ने 4 ग्रंथ लिखे, प्रबोधानंद सरस्वती ने 5 ग्रंथ लिखे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 20 ग्रंथ लिखे, बलदेव विद्याभूषण ने 24 ग्रंथ लिखे, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन सारे ग्रंथों का साक्षात्कार उनके हृदय में प्रकट था। और तत्पश्चात और किशोरदास बाबाजी महाराज ने भी कुछ लिखा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कितने ग्रंथ लिखे? 75 ग्रंथ लिखे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नौकरी करते हुए, 11 बच्चों को संभालते हुए। री बोल, तो सभी गृहस्थों के लिए एक, ये बाकी सब वैरागी थे जितना भी मैंने लिस्ट लिया, अधिकांश सार्वभौम भट्टाचार्य वगैरह छोड़ के। तो भक्ति विनोद ठाकुर 75 बुक्स लिखे। गुरुदम ग्रंथदम गौर धामदम नामदम मुदा भक्तिदम भूरिदम वंदे भक्ति विनोदकम सदा। ठाकुर भक्ति विनोद की स्तुति की गई है इस श्लोक में। गुरुदम भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या दिया हमको, सरस्वती ठाकुर के शिष्य कह रहे हैं, गुरुदम उन्होंने हमको हमारा गुरु दिया सरस्वती ठाकुर। ग्रंथदम ग्रंथ दिए, गौर धामदम महाप्रभु का धाम दिया, नामदम नाम की महिमा क्या है इसके ऊपर हरिनाम चिंतामणि इत्यादि कई ग्रंथ दिए, और अपने अंतिम 4-5 वर्षों में वो अपने जगन्नाथपुरी के भजन कुटीर में पूरी तरह वहीं पर बैठकर भजन में आविष्ट हो गए, फिर कुछ नहीं किया उन्होंने। तो नाम भजन की महिमा क्या है उसका उन्होंने प्रकाशन किया, नामदम। हाँ, तो इसलिए नामदम मुदा गौर धामदम नामदम मुदा भक्तिदम भूरिदम वंदे भक्ति विनोदकम सदा। भक्ति में किस प्रकार से आनंद लेना है इसका उन्होंने पूर्णतः विज्ञापन किया। स्वैराचारब्धि सम्मग्नान जीवान गौरांघ्रि पंकजे उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्यम समबोधयत। उनके पुत्र का नाम था शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो शिला सरस्वती ठाकुर उन्होंने लगभग 22 ग्रंथ लिखे, 22 बुक्स, प्रवचन और कथा तो बहुत की, और उनके बताए गए कई जो वक्तव्यों के आधार पर कई मैगजीन्स भी निकले, कई उनके लेक्चर्स को भी ट्रांसक्राइब किए गए, और सज्जन तोषिणी जो भक्ति विनोद ठाकुर ने आरंभ की थी फिर उसको फिर एक नया रूप देते हुए, और एक उस समय के अर्वाचीन वर्तमान राजनीति और समाज से संबंधित घटनाओं को लेकर सरस्वती ठाकुर ने एक डेली न्यूज़पेपर आरंभ किया जिसका क्या नाम था, नदिया प्रकाश डेली न्यूज़पेपर। तो किसी ने उनको पूछा डेली न्यूज़पेपर कहां का न्यूज, बोला स्पिरिचुअल वर्ल्ड का न्यूज। बोले डेली कैसे छापोगे, इतना मैटर है क्या आपके पास, बोला मेरे पास इतना मैटर है हर सेकंड में निकाल सकता हूं, लेकिन उसको करेगा कौन, किसी की ताकत नहीं है, इसलिए चलो तुम भी क्या याद रखोगे, दिन में एक काफी है। तो वो नदिया प्रकाश का पूरा वॉल्यूम्स हमारे पास भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर कलकत्ता में पड़ा हुआ है, कंप्लीट, जो 1926 या 27 में स्टार्ट हुआ और चला 1947-48 तक, 20 साल का हर कॉपी है, सब बंगाली में, उसको इंग्लिश में कौन अनुवाद करेगा उसको हम खोज रहे हैं सस्ते में। तो अगर कोई आज की कथा सुनने वालों में कोई वॉलंटियर आए तो बीच में थोड़ा मैं कमर्शियल ब्रेक भी डाल रहा हूं कि हमें संपर्क करें, क्योंकि उसके अंदर जो आज के तारीख में फेमस है क्या, ब्लॉग। ये ब्लॉग किसने स्टार्ट किया, सरस्वती ठाकुर ने, बाय द वे फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो उस समय समाज में क्या चल रहा था, तो उनका बड़ा फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पहला पेज जो पिछले हफ्ते के न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक वो डाल देंगे, अंग्रेज सरकार ने ऐसा किया, यहां पर ऐसा हुआ, यहां पे वैसा हुआ, तो पहला पूरा पेज न्यूज़पेपर, उसको देख के लोगों को लगेगा अरे लगता है बहुत कुछ मसाला है इसमें, और जैसे ही खोलेंगे बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा फिलॉसफी। तो पहले पेज में भी जो न्यूज़पेपर से जो मैटर है उसमें थोड़ा उन्होंने अपनी टिप्पणी की वैष्णवों के दृष्टिकोण से। तो उन्होंने लगभग 22 ग्रंथ लिखे, स्वैराचार अब्धि सम्मग्नान, इस जगत में जो जीव हर प्रकार के अपने स्वच्छंद मनगढ़ंत कपोल कल्पित धारणाओं को लेकर विचरण कर रहे हैं, भ्रमित होके नरक में जा रहे हैं। स्वैराचार अब्धि सम्मग्नान, दोज आर ड्राउनिंग इन द ओशन ऑफ विम्सिकल डिसीशन मेकिंग। स्वैराचार, स्वैराचार अर्थात जो मन में आया, मनमाने के सागर में जो लोग डूब रहे हैं, जीवान गौरांघ्रि पंकजे, उन डूबते हुए जीवों को उठाकर कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्थापित करना। तो स्थापित कैसे करें, उनको तो खुद उठना होगा, ये केवल संदेश दे सकते हैं, निकलो यार निकलो डूब रहे हो। तो फिर उद्धृत्य शरणापत्तेर, तो उनको जो ज्ञान देना उसको कहते हैं शरणागति का ज्ञान, महात्म्यम समबोधित, शरणागति की महिमा का उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से संबोधन कराया कि भाई शरणागति आपके लिए अच्छा है, ये आप डूब रहे हो। बोले इतने सो आसपास मेरे इतने लोग भी तो डूब रहे हैं, मजा आ रहा है, वहां पर खाली खाली लग रहा है। तो उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्य, महिमा वर्णन करना पड़ता है। अरे यहां पर मछली भी, अरे मछली नहीं शार्क है, हो दांत देखो उसका काट जाएगा। तो प्रेम से समझाना पड़ता है, वो समझाने का कार्य सभी आचार्यगण करते हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से। उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्यम समबोधित, तो सरस्वती ठाकुर ने 22 ग्रंथ लिखे और हिज डिवाइन ग्रेस शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 70 ग्रंथ लिखे। तो ये सब मिलाए तो कितना होता है, 257 मेन गौड़ीय लिटरेचर्स, 257 गौड़ीय ग्रंथ लिखे गए श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के द्वारा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि महाप्रभु ने कितने ग्रंथ लिखे। तो प्रमुख बात यह है कि महाप्रभु ने इतने लोगों को ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी, लेकिन स्वयं केवल 8 श्लोक बोल गए। तो ये पूरा जो 257 का मैंने जो लिस्ट बताया, वो अपना कोई बीआरसी का प्रोजेक्ट मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपको इस बात से अवगत कराने कि इस परिस्थिति में महाप्रभु का श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम क्यों महत्व रखता है। क्योंकि उनको जो कुछ कहना था उन्होंने इन 8 श्लोकों के अंदर उसको फिट कर दिया, तो इसलिए ये 8 श्लोक बड़े शक्तिशाली हैं। तो दीज 8 वर्सेस ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं इट इज फॉर लाइफ टाइम स्टडी, जीवन भर उसको हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। एंड इट इज अ नेकलेस फॉर द गौड़ियाज, जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए शिक्षाष्टकम क्या है, हार की भांति है। और इसलिए रूप गोस्वामी की पद्यावली में इनका विश्लेषण हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी इसका वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, गंभीरा में ये वर्णन करते हैं। तो इसलिए ठाकुर भक्तिविनोद ने संबोधन भाष्यम करके प्रथम बार, ये भी बड़ी विचित्र बात है कि महाप्रभु का ये शिक्षाष्टकम चैतन्य चरितामृत में आता है अंत्यलीला में, लेकिन इसके ऊपर किसी ने भाष्य नहीं लिखा जब तक कि ठाकुर भक्ति विनोद ने नहीं लिखा। तो बीच में लगभग कई वर्ष तक कुछ हुआ नहीं। तो इन्होंने, ठाकुर भक्ति विनोद ने इन 8 श्लोकों को भक्ति के जो अदौ श्रद्धा से लेकर प्रेम तक जो चलता है, साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसके साथ कनेक्ट किया। तो पहले श्लोक में ये कहते हैं कि पूरा अदौ श्रद्धा से लेकर प्रेम तक सभी स्टेजेस का वर्णन है, और फिर दूसरे श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक क्रमशः फिर एक एक करके उसका विश्लेषण है। तो इस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद शिक्षाष्टकम और भक्ति के स्तरों के बीच में उन्होंने इसका वर्णन किया और भजन रहस्य में और डिटेल में इसका वर्णन किया है। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी का जो कमेंट्री है इसमें कि ये वास्तव में एक दिशा देती है हमें इस शिक्षाष्टकम को समझने के लिए, और इसलिए यहां पर वर्णन आता है कि जो जात रति साधक है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया और अजात रति साधक जिसके हृदय में भाव उत्पन्न नहीं हुआ, दोनों स्तरों के लोग इस नाम से जुड़कर तीन स्तर पर नाम को समझ पाते हैं, नॉलेज नेम एंड नॉलेज, नेम नॉलेज एंड अफेक्शन। अर्थात जो अजात हैं उनको केवल नाम का ज्ञान होता है और उसका वो साधना आरंभ नहीं कर पाते, फिर जो साधना आरंभ करता है तो उसको नाम और ज्ञान दोनों के विषय में जानकारी होती है, लेकिन जो वास्तव में इस नाम के भीतर प्रविष्ट करता है, निरपराध जप करने लगता है, तब फिर नाम के प्रति प्रीति जागृत होने लगती है। अहं कृतिमकार स्यात् न कारंतन विशेषक तस्मात् तो नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यं परिप्रतिषिध्यते। तो वर्णन आया है जब हम नमः शब्द का प्रयोग करते हैं, नमः शब्द का अर्थ क्या है, हम अहंकार का दमन कर रहे हैं। अहंकृति मकार स्यात्, म शब्द जो है अहंकार का प्रतीक है, न अर्थात उसका निषेध। तस्मात् तो नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यं प्रतिषिध्यते, हम अपनी स्वतंत्रता की इस लकीर को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे लुप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के इस जीवन से हम परेशान हो चुके हैं। स्वातंत्र्यं प्रतिषिध्यते नमः, अर्थात हम आपके सेवा में रत रहना चाहते हैं। भगवत परतंत्र्यस्य तदायतात्म जीवन तस्मात् स्वसामर्थ्य विदिम त्यजेत सर्वम अशेषतः। और दूसरा, हम भगवान के ऊपर परतंत्रता को स्वीकार करते हैं बिकॉज दैट इज अ नेचुरल कंडीशन ऑफ द सोल। तो ये स्वतंत्रता क्या है, अननेचुरल है, कृत्रिम है, और परतंत्रता स्वाभाविक है। भगवत परतंत्र सौ तदायतात्म जीवन, ये आत्मा का जीवन है परतंत्र होना, भगवान के हाथ की उंगली को पकड़ के चलना, ये आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है। भगवत परतंत्रो सौ तदायतात्म जीवन, इसलिए जीव को प्रसन्न होना हो तो उसे क्या करना है, तस्मात् स्वसामर्थ्य विधिम, स्वसामर्थ्य अर्थात मैंने ये कार्य सिद्ध किया है, मेरी ये कलाएं हैं, मेरी ये क्षमताएं हैं, मेरी ये सिद्धियां हैं, मेरी ये शक्ति है। स्वसामर्थ्य अर्थात अपने सामर्थ्य के ऊपर अभिमान त्यजेत, उसे त्यागना है। कैसे, सर्वम, हर प्रकार के इस भाव को त्यागना है। अशेषतः, अंतिम बिंदु तक उसे त्यागना है। तो सर्वम अशेषतः सुपरलेटिव इफेक्ट के लिए, सर्वम अशेषतः तस्मात् स्व सामर्थ्य विदिम त्यजेत सर्वम अशेषतः। तो पद्म पुराण में इस श्लोक का वर्णन आया है कि जब कोई हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे आज के श्लोक में मंत्र तस्तंत्र छिद्रम देश कालार वस्तुतः, इन मंत्रों के माध्यम से हम अपने आप को आत्मसमर्पण करने का उल्लेख कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जब हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हम अपने आप को भगवान के इस पार्श्वभूमि के साथ हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, कालान नष्टान भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढ़ं गाढ़ं लियतां चित्तभृंग। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में दो श्लोक उन्होंने उस समय तुरंत लिख दिया था। एक था वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणा, और ये दूसरा ये श्लोक था। कालान, काल के प्रभाव से नष्टम, नष्ट हो गया था। भक्ति योगम निजम, यह आपके चरणों के प्रति जो भक्ति योग वो नष्ट हो गया था। लोग भूल गए थे कि कृष्ण के चरणों में भक्ति योग कैसे करने का। कृष्ण तो बोल के निकल गए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज मन मना भमग्ध को, सब बोल के चले गए। कृष्ण बोल के निकल गए, कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग में तो लोगों की स्मरण शक्ति वैसे भी कम है, मंद भाग्य सुमन। तो कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई कोई भजन वजन हो नहीं रहा है, मैं तो 700 श्लोक बोल के चला गया लेकिन कोई मेरे शिक्षाओं का अनुगमन नहीं कर रहा। तो फिर उनको लगा कि मुझे स्वयं आना पड़ेगा सिखाने के लिए, क्योंकि कभी शिक्षा से काम नहीं होता, बोलने पर कुछ होता नहीं, खुद कसरत करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, अरे मन मना भव मत भक्त वगैरह बोल दिया लेकिन लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो बोला, अरे वो अर्जुन पागल था, कुछ तो हो गया था, उसको टेंशन आ गया था, कुछ तो बोल के निकल गए वो, उनका तो काम हो गया, राजा भी बन गया, मुझे क्या मिलेगा, न तो मेरे पास युद्ध है, न रथ है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, तो फिर क्या। तो कई लोग समझ नहीं पाए कि गीता क्यों कही गई, क्यों सुनाई गई, इसलिए गीता के ज्ञान की उपेक्षा होने लगी। प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नाम, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अपने ही प्रति भक्ति को प्रदर्शित करने। आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे, और श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में कितना अमृत छिपा हुआ है इसका अनुभव किए और इसका प्रकाशन किए। गाढ़म गाढ़म लियताम चित्तभृंग, और जैसे किसी कमल पुष्प के कोश की ओर भ्रमर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होकर उसमें मदमत्त हो जाता है। श्री श्रीमद भगवत पदाम्बुज मधु स्वादोत्सवै शतपदै निक्षिप्ता मधुबिंदवश्च परितै भ्रष्टात् मुखात् गुंजितै यत्नै किंचित् हाहृतं परब्रतो श्रेयोर्थिना तन्मया भूयो भूयो इतो रजांसि पदसं लग्नानि तेषां भजे। जो हरिनाम और हरि कथा का अमृत, ये वास्तव में मद की तरह या हनी की तरह भंडार के रूप में है। मधुमक्खी उसको आकर उसको चखता है और मदमत्त हो जाता है, गाने लगता है, लेकिन फिर भी और मद को चखने की इच्छा भी होती है। तो इतना जब स्वादिष्ट कोई व्यंजन बने कि उसकी स्तुति करने के लिए व्यक्ति गान करने लगे, व्यक्त करने लगे क्या बनाया है, लेकिन साथ साथ वो और भी आस्वादन करना चाहता है, तो कंफ्यूज हो जाता है, मैं खाऊं कि मैं गुणगान करूं। तो खाना नहीं बंद कर सकता, पीना नहीं बंद कर सकता, और गुणानुवाद करना भी बंद नहीं कर सकता। तो फिर जब भरे मुंह के साथ कुछ बोलने का प्रयास करो तो दो चार बूंद तो छलकेगा। तो इसलिए वो कहते हैं, यत्ने किंचित यहां हृतो परब्रतो श्रेयोर्तिना तन्मया, ऐसे कथा का वर्णन करते हुए जब दो चार बूंदे महात्माओं के मुखारविंद से टपकती हैं, उसको हम दूर से ही स्वीकार कर लेते हैं। लग्नानि तेषां भजे, इसलिए गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए प्रकट हुए। तो मध्य लीला में चैतन्य भागवत ने वर्णन आया कि महाप्रभु का संन्यास नाम श्री कृष्ण चैतन्य क्यों पड़ा। महाप्रभु का नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, ये नाम क्यों दिया गया। जत जग तेरे तुमी कृष्ण बोलाइला कोरोइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिला। तो केशव भारती जी काटवा में सन्यास देने से पूर्व और नाम देने से पूर्व उनको बताते हैं, मैं आपको ये नाम क्यों दे रहा हूं, जत जगत तेरे तुमी कृष्ण बुलाइला, आप संपूर्ण जगत को के मुख से कृष्ण का नाम बुलवाओगे, जत जगत तेरे तुमी कृष्ण बुलाइला, दूसरों से नाम संकीर्तन करवाओगे, इसलिए जब लोग नाम लेंगे कृष्ण का कराइला चैतन्य, तब उनकी चेतना सुप्तावस्था से पुनः जागृत होगी। यू विल मेक देम कॉन्शियस, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिला, कैसे, कीर्तन को प्रकाशित करके। तो इसलिए क्योंकि आप कृष्ण का नाम प्रकाशन करके इस बद्ध जीव, इन बद्ध जीवों की चेतना को फिर पुनर्जागृत करोगे, इसलिए ऐते का तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोक तुमा होते जाते होला धन्य। तो इसलिए आपका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक जितने भी लोग इस जगत में हैं सर्वलोक तोमा होते जाते हुए धन्य, आपके कारण जगत का हर जीव धन्य हो जाएगा, क्योंकि आप ये हरिनाम संकीर्तन सभी दिशाओं में प्रकाशित करोगे। हे नमते सन्यास कोरिया प्रभु धन्य प्रकाशिला आत्म नाम श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। हे न मत सन्यास करिया प्रभु धन्य, इसलिए महाप्रभु सन्यास धारण किए जिसके माध्यम से प्रकाशिला आत्म नाम, अपने ही नाम का प्रकाशन कर सके, और श्री कृष्ण चैतन्य, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये कृष्ण चैतन्य नाम हुआ। तो हम देखते हैं जब महाप्रभु गंभीरा में थे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 18 वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और अंत लीला के लगभग 12वें 13वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक इसका विस्तृत वर्णन आता है, और महाप्रभु ने ऐसे ऐसे दिव्य जो भाव प्रकाशित किए जिसका वर्णन और जिसको समझना बड़ा ही कठिन है। प्रेमोद्भावित हर्ष ईर्ष्या उद्वेग दैन्यार्ति मिश्रितम लपितम गौरचंद्रस्य भाग्यवत भीर निषेव्यते। तो ये चैतन्य चरितामृत का अंतिम अध्याय है और अंतिम अध्याय में ये वर्णन आ रहा है, क्या, प्रेम उद्भाव और हर्ष ईर्ष्या। श्री चैतन्य महाप्रभु हर प्रकार के दिव्य विकार उत्पन्न कर रहे थे, हर्ष ईर्ष्या उद्वेग दैन्यार्ति मिश्रितम, इन सभी से मिश्रित भावों को जब व्यक्त किए और ऐसे भावों को व्यक्त करते करते महाप्रभु क्या बोल रहे थे, क्या व्यक्त कर रहे थे, ये केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय ही समझ पा रहे थे। लपितम गौरचंद्रस्य, महाप्रभु की बहकी बहकी इन बातों को भाग्यवत भीर निषेव्यते, भाग्यवान व्यक्ति ही इसमें प्रविष्ट कर सकता है। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, ये इन दोनों का बड़ा महत्व है। स्वरूप रामानंद ए दुई जन सने रात्रि दिन रस गीत श्लोक आस्वादने। स्वरूप और रामानंद राय के बीच महाप्रभु हर प्रकार के सुंदर गीत और श्लोक सुनाकर रस का आस्वादन कर रहे थे। कौन दिने कौन भावे श्लोक पठन से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। और महाप्रभु कौन से भाव में, कौन से दिन, कौन सा श्लोक उनके मन में प्रविष्ट हो जाता
और सही श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण, पूरी रात भर महाप्रभु उस श्लोक के उस रस में उस भाव में प्रविष्ट होकर रात्रि की निद्रा भंग कर देते। सोचो हम लोग श्लोक सुनकर निद्रा आ जाती है और महाप्रभु श्लोक के ऊपर मनन करके रात भर विचार कर रहे थे, सही श्लोक आस्वादित आस्वादन कर रहे थे। रात्रि जागरण, इतना अधिक जब कभी दर्द होता है, कभी पेट दर्द या पीठ दर्द या सर दर्द, तो रात की निद्रा भंग हो जाती है। तो दर्द के कारण, बड़ी भयानक विषम पीड़ा के कारण रात्रि की निद्रा के भंग का अनुभव हमको है, लेकिन आनंद के अतिरेक के कारण, आनंद और उल्लास के जो हर्ष के प्रभाव के कारण निद्रा का भंग होना, ये कलयुग में बड़ा विरले है कि इतना हर्षित हो जाए कि रात को नींद ही ना आए। और यहां पर महाप्रभु दिव्य हर्ष की अनुभूति कर रहे थे। हर्षे प्रभु कहें सुन स्वरूप राम राय, नाम कीर्त नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। अब महाप्रभु लगभग 1534 के आसपास का समय, महाप्रभु सोच रहे हैं कि जिस कार्य को संपन्न करने हम आए वो अब लगभग समाप्त हो चुका, क्योंकि ये भौतिक जगत है। यहां भौतिक जगत में किसी भी अच्छे कार्य और अच्छे वस्तु और अच्छे व्यक्ति और अच्छे संबंध और अच्छे अनुभव की एक सीमा होती है। इस भौतिक जगत की विशेषता है कि हर पदार्थ, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर अनुभव के ऊपर एक्सपायरी डेट चिपका हुआ है। उसके उत्पादन के दिन ही सबसे पहले एक्सपायरी डेट सिद्ध होता है। इसलिए यादवों के साथ बहुत आनंद भी, यादवों ने भी द्वारका में एक एक महल में क्या पार्टी किया, बहुत मजा लूटा, क्या महल पाया था एक एक यादव ने, हा? बिना कोई ईएमआई दिए, कोई हाउसिंग लोन नहीं था, सीधा मथुरा में थे, अगले दिन सुबह इतना विशाल घर मिला, घर नहीं महल, हरेक को एक एक महल मिला द्वारका में। और सब सोच रहे थे अरे यार जय कृष्ण भगवान की जय, अपने भगवान है नंबर वन है ये, इनके चरणों में जाओ तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता लास्ट में मालूम पड़ा। तो इसलिए कृष्ण जो है टेढ़े ही खड़े रहते हैं, क्योंकि अगला वो क्या करेंगे वो खुद भी नहीं बता सकते, तो इसलिए पहले ही चेतावनी देते थे, सोच लो भैया अपने पास आना है कि नहीं। तो इसलिए अच्छे से अच्छा, और यादवों, चक्रवर्ती पाद कहते यादवों को समय पर क्यों निकाला, यादवों का दोष क्या था, कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। है? दोष है क्या ये, यहां तो हम मर रहे हैं कि एक बूंद तो आ जाए, हाँ बहुत बड़ा दोष था। क्यों, क्योंकि इतना अधिक प्रेम उनके हृदय में था कि कृष्ण के अंतर्धान होने के पश्चात वो कृष्ण के विरह के शोक में अपने आप को, अपनी भावनाओं को नियोजित नहीं कर पाते। और क्योंकि शक्तिशाली क्षत्रिय हैं, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि नहीं, कोई ब्राह्मण होगा तो रोएगा, क्षत्रिय होगा तो मारेगा। तो हो सकता है ये पूरे विश्व भर में क्रोधावेश में आकर विध्वंस मचा दे कि कृष्ण के विरह में हम करें तो क्या करें। तो इसलिए कृष्ण ने कहा इनका बहुत अधिक प्रेम समाज के लिए उचित नहीं, भविष्य में लोग इनको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए पहले ही निकालो। और तब भगवान ने अर्थात दो अपने आंखों के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते दो महान युद्ध करवाए, एक कुरुक्षेत्र में 64 करोड़ लोगों को मरवाया और दूसरा यादवों में, वो तो भागवत में पूरा गिनती दिया हुआ है, 64 के ऊपर ही है, वो बहुत बड़ा फिगर है। और इतना बड़ा खतरनाक दो दो युद्ध करवाए भगवान ने उस समय। तो इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है कि चाहे कितना भी कोई अच्छा कार्य क्यों न हो, इस भौतिक जगत में उसका एक अंत होना अनिवार्य है। तो इसलिए महाप्रभु भी बोले, अभी 48 साल हमने बहुत लीला की, बहुत लोगों को डायरेक्ट प्रेम दे दिया। महाप्रभु ने कोई किसी को दो माला चालू कर, चार माला चालू कर, गीता कोर्स में रजिस्टर हो जा, हाँ अभी तू शराबी कबाबी है छोड़ दे इसको, ऐसा कुछ नहीं। महाप्रभु का प्रीचिंग बड़ा सिंपल था, कोई भी मिलता आलिंगन करते, आलिंगन करते वो डायरेक्ट प्रेम, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त, ये सब तो बाद के लोगों के लिए अपने लिए दे दिया, लेकिन ऑन द स्पॉट जो मेन था उन सबको दे दिया। तो महाप्रभु जब थे सीधा वो प्रेम देकर निकल गए। अब महाप्रभु बोले अब ऐसे वितरित करते रहेंगे तो ये आध्यात्मिक जगत बन जाएगा, इसलिए अपने को भी थोड़ा फुल स्टॉप मारना पड़ेगा, तब जाकर तो आगे लोग फिर जो है मरमर के करेंगे साधना भक्ति और प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने विचार किया कि अब हम इसको समाप्त करते हैं। लेकिन महाप्रभु को लग रहा था कि जिस मिशन के लिए मैं आया वो पूरा किया कि नहीं किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो जब समाप्त होता है तो अपनी टीम के साथ बैठता है कि भाई अपन ने जो कार्य करने के लिए अपन संकल्प किए थे वो हुआ कि नहीं अपना, कि अपन कुछ और स्टार्ट किए थे कुछ और निकला। तो इसलिए महाप्रभु अपने टीम के साथ बैठे, कौन, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, और महाप्रभु उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। हर्षे प्रभु कहिन सुन स्वरूप राम राय, महाप्रभु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य पूरा हो चुका। व्हाट डू यू से, बोले आप क्या बोलते हो आप बताओ। तो महाप्रभु कहते हैं नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, तो कलयुग के लिए नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ उपाय, वो तो मैं यहां दे के ही निकल रहा हूं। संकीर्तन यज्ञ कृष्ण कोरिया कलौ कृष्ण आराधन, जो भी कलयुग में कृष्ण का आराधन करेगा सही तो सुमेध पाए कृष्ण चरण, वो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग में कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेगा, ये मैंने उपाय दे दिया। फिर महाप्रभु कहते हैं रिकन्फर्म करते हुए कि भाई अपन ऐसा नहीं मेन काम करने आए और जो सूटकेस था वो दिए बिना निकल गए, देने आए थे कुछ और बिना दिए निकल गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्त प्रायजंति ही सुमेधश, जो महाप्रभु कहने लगे 11वें स्कंद का ये श्लोक अपने बारे में, यज्ञ संकीर्तन प्रायजंति ही सुमेध, बुद्धिमान लोग भगवान की सेवा पूजा करेंगे नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो महाप्रभु अपने अंगों के साथ आए, जैसे नित्यानंद प्रोद्वैताचार्य, उपांग के साथ आए श्रीवास ठाकुर जैसे सेवक, और पार्षद के साथ आए जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय इत्यादि। फिर अब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय अपने सबसे इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स जो लास्ट तक उनके साथ वहां पर थे निकट में, रात्रि के समय में जो जागते थे महाप्रभु के हृदय के आंतरिक भाव को सुनते थे, उनको कहते हैं महाप्रभु नाम संकीर्तन होते सर्व अनर्थ नाश सर्व सौभाग्य कृष्ण प्रेमेर उल्लास। महाप्रभु कहते हैं ये मैं जो नाम संकीर्तन दे के जा रहा हूं इससे क्या क्या होने वाला है इसका भी जो इफेक्ट सुन लो। दोनों को कह रहे हैं क्या, नाम संकीर्तन होते सर्व अनर्थ नाश, सबसे पहले सभी अनर्थों का नाश होगा, और दूसरा सर्व शुभोदय हर प्रकार का शुभ उदय होगा और कृष्ण प्रेमेर उल्लास, कृष्ण प्रेम की धारा नाम संकीर्तन के माध्यम से आरंभ होगी। द फ्लो विल बिगिन फ्रॉम हरिनाम। तो ये तीन मेन अनर्थों का नाश, हर प्रकार के अशुभ का विनाश और शुभ का उदय। तो अशुभ का नाश, शुभ का उदय, और तत्पश्चात कृष्ण प्रेम के अमृत का जो नल है वो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से आरंभ होता है। क्योंकि नल जब शुरू करोगे तब तो जाकर पानी बहना आरंभ करता है। तो फिर इन तीन जो प्रमाणों को लेकर महाप्रभु इसका इफेक्ट क्या है, फिर इसके आगे कहते हैं नेक्स्ट श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादामाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव कंद चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम। ये हरिनाम संकीर्तन के ये सात उपाय, सात प्रभाव इस प्रकार से होंगे। फिर महाप्रभु इस श्लोक का वर्णन करके कहते हैं, संकीर्तन होते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। महाप्रभु कहते हैं कि ये नाम संकीर्तन से, संकीर्तन होते सबसे पहले पाप संसार नाशन, पाप के कारण जो संसार है वो नष्ट होगा, फिर चित्त शुद्धि, चित्त की शुद्धि होगी, सर्व साधन उद्गम, हर प्रकार की सर्व भक्ति साधन, भक्ति करने के लिए जो भी साधन आवश्यक हो वो उत्पन्न होगा। चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, तो हर प्रकार के भक्ति के साधन प्रकट होंगे। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। तो कहते हैं अब जब सर्व भक्ति साधन का उद्गम होगा तो उसका लक्षण क्या है, कृष्ण प्रेमोद्गम। कुछ समय के पश्चात कृष्ण प्रेम का उद्गम होगा। जब कृष्ण प्रेम का उद्गम होगा तब क्या होगा, प्रेमामृत आस्वादन, तब उस प्रेम का हम आस्वादन करने लगेंगे। तब समझना चाहिए कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति हो गई। कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो फिर क्या, सो जाओ? नहीं, सेवामृत समुद्रे मज्जन, तब जाकर सेवा के समुद्र में व्यक्ति निमग्न हो जाता है। अब फिर तोमार सेवाय दुख होए जत से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाये अविद्या दुख। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जब ऐसे अमृत का कोई आस्वादन करेगा तब तो जाकर इस जगत के किसी भी दुख से परे व्यक्ति जा पाएगा। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन को यहां पर प्रकट किया और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के समक्ष उन्होंने ये प्रस्तुत किया। तो एक बार प्रभुपाद जी की एक शिष्या प्रभुपाद के पास आकर कहने लगी कि कई लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, मैं इतनी अच्छी सेवा कर रही हूं फिर भी मुझे भरा बुरा भला कर रहे हैं, मेरा दोष ही नहीं फिर भी दोष दर्शन कर रहे हैं। तो मैं मायापुर छोड़कर बीरनगर जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर का है वहां पर मैं अकेले में जाकर भजन करूंगी, मुझे नहीं सुनना ये सब। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि अगर आपकी कोई आलोचना करे और भक्तों के संग में अगर आपको कुछ त्रुटि हो या ऐसा लगे कि आप बड़े कष्ट में हो, तो प्रभुपाद ने कहा पांच बातों को स्मरण करो। प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले लुक एट व्हाट आई हैव टू टॉलरेट, पहले देखो कि मुझे क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। दूसरा, प्रभुपाद ने कहा यू आर एक्सपेक्टिंग अ काम सी, आप अपेक्षा कर रहे हो कि एक शांति वाला समुद्र मिले, नहीं। तीसरा, केवल गोलोक वृंदावन में ही ऐसे कृष्ण करुणा के समुद्र को आप अपेक्षा कर सकते हो। चौथा, प्रभुपाद ने कहा ऐसे समुद्र में ये हम लोगों का जो वैष्णव समाज है, वैष्णव सत्संग है, ये नौका की तरह है जिसमें गुरुजन कप्तान है, अच्छे कप्तान मिले हैं, क्या प्रॉब्लम है। और पांचवा, आपको इस नौका में बैठने के बाद एक ही संकल्प करना है कि वापस छलांग न लगा, क्योंकि वहां पर क्या है आप वो समझो। तो इसलिए किसी भक्त ने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद जी बहुत सारे लोग यहां पर हमारा विरोध कर रहे हैं, इस्कॉन का विरोध कर रहे हैं, भक्तों का विरोध कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा देखिए जिनका विरोध करना है वो करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा तीन बातों को याद रखो, हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, सामने से अगर आक्रमण हो और मन उद्वेगित हो और हमको भी लगे हम भी प्रतिक्रिया करें, तो प्रभुपाद ने कहा चैंट, डांस, रीड, प्रीच, फोकस ऑन थिंकिंग ऑफ ऑन कृष्णा, थिंकिंग अबाउट कृष्णा। तो जब कोई उत्पात हो जिसके कारण ऐसा लगे कि हमें उद्वेगित किया जा रहा है, वी आर गेटिंग एजिटेटेड टू रिएक्ट, तो रिमेंबर योर मेन बिजनेस। व्हाट इज अवर मेन बिजनेस? थिंक ऑफ कृष्णा, कृष्ण का स्मरण करना, अर्थात कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं, इसके ऊपर मनन करना। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग चार बातें करते हैं, चैंट, डांस, रीड, प्रीच। सिंपल, चैंट, डांस, क्योंकि कभी कभी चैंट से भी मन जो है स्टेबल नहीं होता तो खुद ऊपर नीचे उछलो, तो भगवान के संतोष के लिए नृत्य करो तो मन फिर उसके बाद संकीर्तन के अंतर्गत वो बैठ जाता है, है कि नहीं। तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं जो हरिनाम संकीर्त, जैसे कोई रायट हुआ और पूरी भीड़ जमी हुई है और सब लोग के हाथ में लाठी है, बंदूक है, ये है वो है और आक्रमण करने आए हैं, और कोई प्रेम से निवेदन करे हिंसा मत करो, शांत हो जाओ, ओम बोलो, तो फिर वो क्राउड मॉब आपके ऐसे प्रेम की बात सुनने के लिए तैयार है क्या? तो अगर कोई पुलिस भी आए तो फिर लाउड स्पीकर में पहले अनाउंस करेंगे सब शांत हो जाओ, दंगा फसाद मत करो, फिर उससे कुछ नहीं होगा तो फिर लाठी, फिर उससे कुछ नहीं होगा तो हवा में दो चार जो है शॉट मारें, और फिर भी ऐसा लगा कि बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है तो क्या करें, बाध्य होकर कभी कभी गोलियां भी चलती हैं। उसके बाद भी अगर रायट कंट्रोल में नहीं आया तो आर्मी का टैंक बुलाना पड़ता है, तो फिर आर्मी टेक ओवर करता है। तो आर्मी का टैंक रास्ते पे चलते हुए देखकर फिर सब अपने अपने घर के अंदर जाके बैठते हैं कि बोले यार इसके सामने तो कौन। तो इसलिए कर्मकांड, ज्ञान, योग, अन्य प्रकार के जितने भी मार्ग हैं कलयुग में, ये सब बाकी सभी साधन हैं मन के अंदर जो रायट चल रहा है उसको शांत करने के लिए। ये अंदर ऐसा खतरनाक मॉब बैठा हुआ है विचारों का कि उसको शांत करने के लिए सीधा आर्मी का टैंक घुसाना पड़ता है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये चार बातें बता दी कैसे कृष्ण का विचार करो, चैंट, डांस, रीड एंड प्रीच। दूसरा, प्रभुपाद ने कहा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज यू सर्व द गुरु बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस सिंसियरली। जो भी आपको आदेश मिले उसको प्रामाणिक रूप से पालन करने का प्रयास करो। कि दूसरा कार्य हमको करना है चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर प्रभुपाद जी तीसरा कहते हैं, सिंसियरली का डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज सिंसियरली मीन। तीसरा प्रभुपाद से सिंसियरली मीन्स डोंट चीट योरसेल्फ, अपने आप को फंसाओ मत, ठगो मत। प्रभुपाद ने कहा, इन मेटीरियल लाइफ यू मे बिकम प्राउड, आई हैव चीटेड हिम, आई हैव चीटेड दैट पर्सन, पता है क्या कैसे मैंने ये किया। तो वन मे चीट अनदर पर्सन एंड फील प्राउड, बट इन स्पिरिचुअल लाइफ वन कैनॉट चीट। तो इसलिए बिना इस प्रकार के दंभ की भावना के हमें ये अपनाने का प्रयत्न करना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि हाउ टू डेवलप स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति आप कैसे जागृत करो, इसके लिए वो 8 पॉइंट बताते हैं। पहला प्रभुपाद कहते हैं, यू हैव टू प्रीच टू द नॉन डिवोटीज, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी हो तो ये 8 बातें करनी है। पहला, जो अभक्त हैं उनको प्रचार करो। दूसरा, डिस्कस फिलॉसफी विद द डिवोटीज, तो ऐसा नहीं कि बाहर ही प्रचार करते रह गए और अंदर अपराध करते रह गए। अंदर वैष्णव समुदाय में सिद्धांत चर्चा करो। तीसरा, फिर रीड द स्क्रिप्चर्स डिलिजेंटली, शास्त्रों को अध्ययन कीजिए। चौथा, राइट योर स्क्रिप्चरल रियलाइजेशंस, नॉट ओनली एंग्री ईमेल्स, ये क्यों किया वो क्यों किया। राइट मतलब जितना क्रोध बढ़ता है उतना लंबा ईमेल जाता है। तो ऐसा नहीं कि राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन लिखने की प्रवृत्ति को थोड़ा भगवान के गुणानुवाद में भी प्रयोग करो, राइट। प्रभुपाद कहते हैं स्पेसिफिक। फिर पांचवा, चैंट विद एब्जॉर्प्शन, पूरी तरह ध्यान देकर तल्लीन होकर जप करें। फिर छठा, प्रभुपाद कहते हैं, डोंट गेट ओवर इन्वॉल्व्ड इन मटेरियल अफेयर्स एंड बिजनेस अफेयर्स विच विल क्रिएट सो मच एंग्जाइटी दैट यू कैन नॉट फोकस, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार। तो इसलिए इसको कहते हैं रूप गोस्वामी, अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास अर्थात सामर्थ्य के परे। तो हर एक व्यक्ति का सामर्थ्य अलग अलग होगा। तो आपने किसी को देख के सोचा, अरे ये ऐसा कर रहा है हम भी ऐसे करेंगे, तो मालूम पड़ा वो करते करते आपके मन में चिंतन करने के लिए कोई समय नहीं, केवल चिंता ही करते बैठे हो। तो इसलिए नॉट ओवर इंडल्जिंग। सातवां, बहुत अच्छा प्रभुपाद कहते हैं, ट्रेन द टंग टू स्पीक अबाउट कृष्णा, अपने जिह्वा को शिष्य बनाओ, किस लिए, कृष्ण के विषय में कथा करने के लिए प्रशिक्षण दो। सो दैट ऑल्सो इज अ कल्टिवेशन, अनुशीलनम, ट्रेनिंग, अपने आप नहीं होगा, अभ्यास करना है। कृष्ण के विषय में कीर्तन करने का अभ्यास करें, उसके लिए प्रशिक्षण दें जिह्वा को। एंड एट्थ, बी एब्जॉर्ब्ड इन कंटेम्पलेटिंग, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा नाउ, स्मरण करते रहो हर क्षण, इस क्षण में कृष्ण की कैसी सेवा कर सकता हूं, किस प्रकार मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, ऐसा हम विचार करें। तो इसलिए वर्ल्ड होली नेम वीक के उपलक्ष पर इस्कॉन के हर मंदिर में हरिनाम संकीर्तन, नाम के ऊपर चर्चा, नाम जप इत्यादि को लेकर कई महोत्सव चल रहे हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये महाप्रभु ने सबसे सरल मार्ग दिया है। और इसलिए लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, परम करुणा पाहु दुई जन निताय गौरचंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद। अर्थात नृत्य करना, ये भी जब प्रभुपाद स्टार्टिंग में अमेरिका में गए तो केवल स्वामी स्टेप करते थे, हाथ ऊपर उठाए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो 1969 तक केवल कीर्तन 3 साल ऐसे ही चलता था, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर अचानक एक दिन कीर्तन लॉस एंजलस में चल रहा था तो उस कीर्तन के बीच प्रभुपाद उछलने लगे पहली बार। तो इस्कॉन के 3 साल बाद पहली बार उछाल हुआ। तो आपको लगता होगा डे वन से ऐसा होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम 71 में चालू हुआ, 1971। अगर कोई बोले अरे मॉर्निंग प्रोग्राम है, अरे मैंने 66 से 71 का प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि 71 तक मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं था। फिर प्रभुपाद जी ने उसको पूरा एक रूपरेखा दिया कि फिर भागवतम क्लास 72 में स्टार्ट हुआ, डेली भागवतम क्लास। तो ये सब अलग अलग समय पर स्टार्ट हुआ। तो प्रभुपाद उछलने लगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हाथ ऊपर करके। तो जैसे ही ये हुआ सब लोग अवाक रह गए और तुरंत दूसरे मंदिर में ब्रह्मानंद प्रभु को फोन किया लॉस एंजलस से। ब्रह्मानंद प्रभु न्यूयॉर्क में, बोले प्रभुपाद इज जंपिंग। बोले जंपिंग फ्रॉम वेयर? इज जंपिंग अप एंड डाउन, यू कैन डू कीर्तन जंपिंग। अरे हाउ डू यू डू इट, एक्सप्लेन। नो यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, जस्ट जंप, थ्रो योर हैंड अप एंड जंप, हाथ ऊपर को। तो वो भी एक जो है एक न्यूज था, ब्रेकिंग न्यूज। 1969 का वो दिन पूरे इस्कॉन में सनसनी मचा दिया कि अपन कीर्तन में कूद सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं इस तरह से, है कि नहीं। तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु सबको देने आए वो सबसे आसान, छोटा बच्चा प्रभुपाद से, इवन अ चाइल्ड कैन टेक, इवन अ डॉग कैन टेक पार्ट, इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट। सबसे आसान जो मार्ग दे दिया है महाप्रभु ने, कि नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई हम देखे नहीं कि प्रभुपाद को किसी ने कहा व्हाट डू यू डू फॉर रिक्रिएशन, प्रभुपाद सेड अवर एंटायर प्रोग्राम इज ओनली रिक्रिएशन, हमारा पूरा मनोरंजन ही है। सुबह 4:30 बजे कौन स्टार्ट हो जाता है गाने नाचने, गाना नाचना मतलब कोई पार्टी कभी कभी होता है उसमें लोग करते हैं, लेकिन सुबह 4:30 से शुरू। और कोई बोलते नहीं नहीं मैं सुबह वाला प्रोग्राम में नहीं आ सकता, मैं तो लेट नाइट वाला पार्टी वाला व्यक्ति हूँ। बोले ठीक है जाओ जगन्नाथपुरी में जाओ, जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा श्रृंगार कब, बड़ा श्रृंगार वेश रात को होता है, भगवान तब भी खड़े बेटा, नाइट वाले हो क्या, मैं यहाँ हूँ। तो अगर कोई बोलता है मैं 11-12 बजे मेरा बिल्कुल मूड चढ़ता है, तो बोला ठीक जगन्नाथपुरी में है आपके लिए, आपकी प्रतीक्षा में। भगवान ने ऐसा कोई जगह छोड़ा नहीं, कहाँ बचोगे बेटा आ जाओ। भक्ति तीर्थ महाराज जब चौपाटी आया करते थे, वो मंगल आरती जब गाते थे, है कि नहीं, मंगल आरती का श्री राधिका माधवयोर पारा से डांसिंग स्टार्ट हो जाता था, जबरदस्त आगे पीछे आगे पीछे। मतलब उनको देखकर, और मंगल आरती में नॉर्मली सब लोग थोड़ा वो कहते भगवान आप भी थोड़ा सोए रहो, अपना भी चल ही रहा है थोड़ा, है कि नहीं, शरीर को तो उठा दिया लेकिन मन अभी भी उठ रहा है। तो सिंगर से भी सब लोग अपेक्षा करते हैं कि वो भी धीरे धीरे गाए, हम भी धीरे धीरे चलें। तो गाड़ी फर्स्ट गियर में चलता है कि नहीं, गुरु पूजा तक पहुंचता है, फिर जो है थर्ड गियर तक पहुंचता है गुरु पूजा में। और शाम का कीर्तन जब होता है वो फुल फोर्थ गियर में जाता है, तब तक पूरा आदमी जाग जाता है नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल थोड़ी, ये तो बिल्कुल दिव्य, क्योंकि वो तो 1:30-2 बजे उठकर दिन में पता नहीं 40 माला के नीचे तो कभी लाइफ में किए नहीं। तो बिल्कुल हरिनाम सुनते ही उनको झटका लग जाता था। तो स्टार्ट हो गए तो वो हाथ में एक उनका डमरू, और डमरू लेके हम लोग का मंदिर का सामने जो राधा गोपीनाथ के सामने जो एक फाउंटेन हो, जो अभी तो मार्बल वाला है, पहले हम लोग का फाइबर का होता था, वहां से प्रभुपाद प्रभुपाद से यहाँ डांस किए जा रहे, एक पैर पे भाग रहे हैं यहां से वहां वहां से यहाँ। और हम लोग सब बिल्कुल जवान, हम लोग यार ये कौन है, ये कौन सा शरीर लेके आए, ये भौतिक शरीर तो नहीं लगता। तो इतना वो नचा रहे थे, तो फिर सब लोग एक्सटेसी में घूम रहे, तो एक हमारा जो डिवोटी था उस समय कुक था, वो घूमते घूमते, उसका वजन भी थोड़ा ज्यादा था, तो ऐसे घूमते घूमते सीधा वो फाउंटेन में गिर गया। वो फाउंटेन में गिर गया और फिर हमको उठाना पड़ा उसको, और सब लोग बोले अरे वाह ये भी क्या मजा आ गया। तो उस दिन एक नया व्यक्ति आया था, अगले दिन वो मंगल आरती में आया और उसके बाद पूछा आज कुछ हुआ नहीं। तो उसको लगा ये डेली प्रोग्राम में एक न एक जो है अंदर उतरता ही है। तो एक बिल्कुल साउथ इंडियन ब्राह्मण आए थे अपना ऐसा स्टाइल वाला पहन के, गोल वाला, पहली बार ऐसे खड़े हुए थे मंगल आरती में। तो कीर्तन स्टार्ट हुआ फिर फास्ट, हम लोग सब उस समय काफी यंग थे 90s में, तो बिल्कुल जबरदस्त डांसिंग होता था, उछल उछल के लास्ट का 10 मिनट तो पूरा पसीना पसीना हो जाते थे। तो इतना नाचने लगे, फिर उसको भी घुमाने लगे, वो भी घूमते घूमते धड़ाम उसका नीचे गिर गया, फट से उठा लिया। अंधेरा रहता है तो अच्छा हो गया मंगल आरती में। उसके बाद वो इतना रेगुलर हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम में एवरी डे, और आते ही साथ वो स्टार्टिंग से ही गोल 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 घूमने लगते थे, हरिनाम का इफेक्ट हो गया। पहले दिन ऐसे करके आए, उसके बाद हरिनाम का जो टेस्ट लगा कीर्तन में इफेक्ट। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें दिया है, और श्री चैतन्य शिक्षाष्टक के अंतर्गत महाप्रभु ने अपने संपूर्ण सिद्धांत को प्रकट कर दिया है। आज हमने श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की पार्श्वभूमि, उसका जो बैकग्राउंड क्या है, इसके विषय में चर्चा की। अगले रविवार को हम ये पहले श्लोक के ऊपर चेतो दर्पण मार्जनम, इसके 7 प्रभाव, हरिनाम संकीर्तन के 7 प्रभाव क्या हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।